नमस्कार। देश की बात में हाजिर हैं। देश में पहली बार लोकसभा चुनावों के दौरान इतनी बड़ी मात्रा में जब्ती हुई है। मार्च 1 से अब तक यानी पहले चरण के मतदान से पहले 4,650 करोड़ की जब्ती हुई है। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि हर दिन 100 करोड़ की जब्ती हो रही है। अब 4,650 करोड़ में कैश, सोना, चांदी, शराब और ड्रग्स शामिल है। चुनाव आयोग की तरफ से यह भी कहा गया कि लोकसभा चुनावों के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी मात्रा से वोटरों को लुभाने के लिए खर्च किया जा रहा है। 2019 में पूरे चुनाव के दौरान आपको बता दें 3,475 करोड़ की जब्ती हुई थी। तो पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को है। जिन राज्यों में इस दिन वोटिंग होनी है वह हैं अरुणाचल प्रदेश, हम मैप के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, अरुणाचल प्रदेश, असम, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू, लक्षद्वीप, पुडुचेरी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह से इतनी बड़ी मात्रा में सीजर हुआ है, हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर हमारे साथ मौजूद हैं। हिमांशु, चुनाव आयोग ने भी ये कहा है कि इतनी बड़ी मात्रा में जो सीजर हुआ है, और उनके शब्द में ये भी था कि किस तरह से ये वोटरों को लुभाने के लिए एक तरह से है, चिंताजनक है। और 2019 में जो पूरे चुनाव में हुआ था वो पहले चरण से पहले इतना हो गया है।
दी, उससे ज्यादा हो चुका है। आप देखिए, पिछले चुनाव में 3,700 करोड़ के आसपास की रकम जो है वो सीज की गई थी, ड्रग्स के फॉर्म में, मेटल्स और शराब, दूसरे चीजों को लुभाने के लिए वोटरों को। लेकिन इस बार जो संख्या है वो 12,000 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। निधि, अगर आप जनवरी फरवरी के महीने के दौरान जो सीजर्स किए गए उनको देखें तो जो कुल संख्या है वो 7,500 करोड़ की है, और 1 मार्च से 13 अप्रैल के बीच 4,658 करोड़ की है। तो इन दोनों आंकड़ों को अगर आप जोड़ें तो जो कुल संख्या है वो 12,000 करोड़ के आसपास पहुंच जाती है। यानी 5 साल पहले जो भारत में लोकसभा चुनाव हुए थे उससे 3 गुना से भी ज़्यादा बढ़ोतरी जो है वोटरों को लुभाने की जो कोशिश है अवैध तरीके से, वो इन चुनावों में अब तक की जा चुकी है। चुनाव आयोग ने चिंता इस बात की जताई है कि अब भी करीब 6 हफ्ते का वक्त बचा है, पहले चरण का मतदान भी नहीं हुआ है। और हमने देखा है ऐसा पिछले चुनावों में कि अक्सर वोटिंग से ठीक पहले सबसे ज़्यादा कोशिश होती है वोटरों को अवैध तरीके से लुभाने की। और निश्चित तौर पर अगर हम फाइनल आंकड़े जब आएंगे तो बड़ी तस्वीर साफ होगी, लेकिन फिलहाल कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और इसमें महत्वपूर्ण बात, निधि, ये भी है कि इलेक्शन वॉच के जो हेड है अनिल वर्मा, उन्होंने कहा है कि अब चुनाव आयोग को ये जानकारी भी सार्वजनिक करनी चाहिए कि किन व्यक्तियों के पास से ये जो वोटरों को लुभाने के लिए अवैध तरीके की जो सामग्रियां हैं उनको प्रलोभन देने के लिए वो जब्त की गई है। ये कौन लोग थे, उनकी पहचान क्या है, उनके खिलाफ क्या FIR दर्ज किया गया है, उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई चुनाव आयोग कर रहा है, और जो अमाउंट सीज किया गया है अलग अलग सामग्रियां, प्रलोभन सामग्रियां, उनके साथ आयोग आगे क्या करता है, जिससे कि एक पारदर्शिता आएगी इस पूरे प्रक्रिया में। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है एक बड़ी कामयाबी चुनाव आयोग को मिली है, क्योंकि इस बार देखिए जो 4 M का जिक्र किया था मुख्य चुनाव आयुक्त ने, उसमें 1 M मनी पावर था और उसमें सफलता मिली है चुनाव आयोग।
बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी। 12,000 करोड़ की कुल मिलाकर आपने बता दिया किस तरह से हुआ है, पिछले चुनावों के मुकाबले 3 गुना ज्यादा। हमारे साथ अब मेजर जनरल रिटायर्ड अनिल वर्मा, प्रमुख जो हैं ADR के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। और आपने सुना भी होगा मेरे सहयोगी हिमांशु शेखर को, और जो आज ये पूरा डेटा सामने आया है, क्या बदला है चुनावों में अगर इतनी बड़ी मात्रा में ये इतना सारा धन प्रलोभन है, प्रयोग हो रहा है तरीके से, ये बहुत चिंताजनक स्थिति है।
हाँ बिल्कुल, ये चिंताजनक स्थिति है। ये लगातार सीजर्स का जो अमाउंट है वो बढ़ता ही जा रहा है, और अभी जैसे हिमांशु ने मेरे से थोड़ी देर पहले ही बात की थी, तो अब आप देख लीजिए, अभी तो 19 तारीख को चुनाव शुरू होने हैं, पहली पोलिंग होगी, उससे पहले ही लगभग 12,000 करोड़ के करीब का सीजर्स हो गया है। और इससे पहले भी जो असेंबली के चुनाव हुए थे पिछले साल, तो उस समय भी इलेक्शन कमीशन ने जो एक प्रेस रिलीज किया था नवंबर 2023 में, तो 1760 करोड़ का सीजर्स हुआ था, जो 5 असेंबलीज में उस समय इलेक्शन हुआ था, और वो भी पिछले जो मतलब 2018 के इलेक्शंस थे उससे 7 गुना ज्यादा सीजर्स हुआ था। तो अब देखिए, चाहे स्टेट असेंबली के इलेक्शंस हो चाहे पार्लियामेंट के इलेक्शंस हो, ये तादाद बढ़ती ही जा रही है। और सेक्शन 171 B और C जो है इंडियन पीनल कोड का, और रिप्रेजेंटेशन टू पीपल्स एक्ट का जो सेक्शन 123 है, उसमें बड़ा साफ तौर से लिखा गया है कि यूज ऑफ मनी मसल और इन्फ्लुएंस किसी भी प्रकार से पोलिंग को इफेक्ट करने के लिए ये गैर कानूनी है। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि पॉलिटिकल पार्टीज और उनके जो कैंडिडेट्स होते हैं वो बेतहाशा पैसे का, ड्रग्स का, लिकर का इस्तेमाल करते हैं वोटर्स को लुभाने के लिए। तो अब इसमें इलेक्शन कमीशन अपनी तरफ से मुस्तैदी से काम कर रहा है। उन्होंने पिछले साल ये एक नया सिस्टम, एक इंटरनल ऐप बनाया था जिसको वो ESMS बोलते हैं, इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसमें कि कोऑर्डिनेशन होता है जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर स्टेट का है, वहाँ के जो DEO है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, और जितने भी इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटर करने के लिए जो ऑफिसर्स लगाए जाते हैं, एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, और तो इनकी रियल टाइम रिपोर्टिंग होती है ताकि कोऑर्डिनेशन पूरे। अब ये तो जनरल इलेक्शंस तो आपको मालूम है कि इतने सारे स्टेट्स में हो रहा है इकट्ठे।
संक्षेप में मैं ये भी पूछना चाहूंगी, कौन किधर दे रहा है, क्या इसके भी बारे में चुनाव आयोग देता है डेटा, या हमें पता लग सकता है, आप लोगों की नजर में रहता है, क्योंकि ये बहुत
हाँ तो
महत्वपूर्ण है। जी
जी, तो मैं यही चीज बताया था हिमांशु को भी। हमने लगभग 2-3 साल पहले RTIs फाइल की थी इलेक्शन कमीशन को कि भाई आप हमें ये बताइए कि, पहली बात तो ये हमने बोला था कि आपकी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर आप ये डेटा तो दे देते हैं कि जी इतना कैश, इतनी लिकर, इतने ड्रग्स, इतने प्रेशियस मेटल पकड़े गए, बट उसका होता क्या है फिर बाद में, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसकी जानकारी अब ये क्योंकि इलेक्शन के दौरान तो बहुत मुश्किल है इलेक्शन कमीशन को करना, लेकिन एटलीस्ट बाद में तो पता लगना चाहिए। अगर इतने हजारों करोड़ रुपए का आपको ये सामान पकड़ा जा रहा है, मान लीजिए और न्यूज में आता है कि फलाने पॉलिटिशियन की कार में इतना पैसा पकड़ा गया, उसके बाद फिर क्या हुआ उस पैसे का, उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई? तो अब इसका वो ये बताते हैं कि जी जब सीजर हो जाता है और वो उसके बाद इनकम टैक्स वालों की कार्रवाई, वो उनकी जिम्मेवारी शुरू हो जाती है।
ठीक
तो
है,
अगर एक अमाउंट छोटा है तब तो वो ट्रेजरी में जमा करा दिया जाता है, एक हफ्ते का समय दिया जाता है, जो भी क्लेम करना चाहे वो आए और बोले कि जी हाँ ये हमारा है, और उसको प्रूफ देना पड़ता है कि भाई ये किस चीज के लिए पैसा ले जाना था, और अगर
बिल्कुल
उससे वो सेटिस्फाई होते हैं तो पैसा वापस कर देते हैं। लेकिन फिर बाद में क्या होता है, ये जो लिकर
बिल्कुल
और
सर,
ड्रग्स
ये
इतने,
बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे बताया जा रहा है, मेरे पास समय सिर्फ इतना ही, लेकिन अपने आप में ये बड़ा सवाल हो जाता है कि इतनी बड़ी मात्रा में अगर सीजर हो रहा है, उसमें पैसे, कैश, सोना, चांदी, ड्रग्स, शराब तक है, तो ये वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए ये अपने आप में एक चिंताजनक स्थिति है। लेकिन
बस
चुनाव
एक
आयोग
पॉइंट मैं
की
बताना
पहल
चाहता
पर ये जी
हूँ, कोर्ट में किसी ने केस किया था तो गवर्नमेंट ने ये बोला था कि 1% से कम लोगों को सजा मिली थी।
जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए सर, और अपनी बात सामने रखने के लिए। एक छोटा सा हम लोग ब्रेक लेते हैं और तुरंत लौटते। तो चुनावों का के दिन है, बाड़मेर आपको लिए चलते हैं। यहाँ पर एक अलग तूफान का जिक्र हो रहा है और हर सबकी वहाँ पर जुबान पर एक ही नाम बताया जा रहा है, रविंद्र भाटी का, जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं। कांग्रेस बीजेपी दोनों को ही टक्कर दे रहे हैं। तो रेगिस्तान में NDTV के साथ रविंद्र भाटी ने खास मुलाकात की है, उस बातचीत का एक अंश देखिए।
बाड़मेर एकदम से हॉट सीट बन गई है। वैसे बीजेपी मोदी मैजिक का भरोसा कर रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस जातिगत राजनीति को साध रही है। लेकिन यहाँ पर एक तरह से डेजर्ट स्टॉर्म लेके आए हैं निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र सिंह भाटी। रविंद्र जी वैसे MLA का चुनाव लड़ चुके हैं, युवा नेता है, सिर्फ 27 साल की उम्र के हैं, लेकिन उनके आने से ये एकदम से हॉट सीट बन गई है, त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। 22 लाख फॉलोअर्स है इनके इंस्टाग्राम पे। रविंद्र जी क्या सोच के आपने लोकसभा चुनाव लड़ा? बीच में काफी बातचीत चल रही थी बीजेपी से, लेकिन आपके आने से ये जो त्रिकोणीय मुकाबला बन गया, इसको आप कैसे देखते हैं?
मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की जनता का कहना था कि आगे आके मजबूती से हमारी बात रखो और ये चुनाव लड़ो, और ये चुनाव आपको लड़ना ही पड़ेगा। तो मैंने जनता के आदेश के अनुसार, मैंने मेरे कर्तव्य की पालना करते हुए मैं चुनाव में आया हूँ। और बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, भारत का सेकंड नंबर जो लोकसभा क्षेत्र है, आज के समय में मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। वो तमाम चीजें जो एक जगह होनी चाहिए आज हमें नहीं मिल रही,
जैसे कि मैंने सुना है पानी, हेल्थ, यू नो, हॉस्पिटल, हाँ, तो ये एजुकेशन, ये पॉइंट बाय पॉइंट आप संक्षिप्त में मेरे को बताइए।
बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ा इश्यू आजादी से लेकर अब तक पानी का है। हमारे इस पूरे क्षेत्र में पानी की सबसे बड़ी किल्लत है। गर्मियों के दिन है, अब जो स्थितियां होगी वो वाकई बद से बदतर होगी। साथ ही साथ मैं अगर एजुकेशन में बात करूं तो एजुकेशन सिस्टम यहाँ का ऐसा है कि सब 12th तक स्कूल्स है, वहाँ पे एक टीचर है, कोई पढ़ाने वाला नहीं है। कॉलेजेस की बात ही नहीं करें तो ठीक है, एक बाड़मेर में एक कॉलेज है, उसके अलावा अब जाके कहीं कॉलेजेस खुलने लगी है जिसकी भी बिल्डिंग्स नहीं है। साथ ही साथ अगर मैं हॉस्पिटल्स की बात करूं तो यहाँ के लोगों को 200-200 किलोमीटर तक एक इंजेक्शन के लिए, एक दवाई तक के लिए जाना पड़ रहा है।
लेकिन रविंद्र जी, कहीं ना कहीं ये भी सोच रहती कि अगर आप सरकार में रहें, गवर्नेंस में रहें, तो आप कुछ कर सकते हैं, निर्दलीय होकर आप क्या करेंगे? और बीजेपी ने तो बहुत कोशिश की आपको लाने के लिए।
मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडिपेंडेंट जो कर सकता है, मुझे लगता है कि वो शायद सरकार के अंदर रह के भी वो आदमी नहीं कर सकते। निर्दलीय पक्ष और विपक्ष के बीच की एक धुरी होती है, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जितनी मजबूती से सदन के अंदर निर्दलीय अपनी बात रख सकता है, उतनी मजबूती से पक्ष और विपक्ष के लोग भी नहीं रख सकते।
लेकिन जो ये जो पूरा आपका एक तरह से क्रेज है ना, ये आपको लगता है कैसे हुआ है? मतलब ये लोग अपने आप आपसे जुड़ रहे हैं या ये सोशल मीडिया का कमाल है?
ये लोग एक उम्मीद के साथ जुड़ रहे हैं, एक भरोसे के साथ जुड़ रहे हैं, एक विश्वास के साथ में कि हमारा भाई हमारे लिए कुछ करेगा, इस विश्वास के साथ में जुड़ रहे हैं।
आपके पिताजी एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर थे, तो क्या आप कहेंगे कि जो बहुत हम्बल बैकग्राउंड था आपका, वो कहीं ना कहीं उसको आपको प्रेरणा मिली कुछ करने के लिए, या हमेशा दिल में जज्बा था?
मुझे इस क्षेत्र के लिए कुछ करना है, जहाँ पे मैं जाया जन्मा हूँ, मैं अगर इस क्षेत्र के लिए कहीं पे भी काम आ पाऊँ तो मैं खुद को सौभाग्यशाली महसूस करूंगा। मेरे पिताजी अध्यापक हैं, आज भी हैं, और साधारण परिवार से आता हूँ। इन तमाम साथियों की बदौलत मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ आने वाले समय में इनके लिए जी जान लगाऊंगा और काम करूंगा।
अच्छा, लोग बहुत ये आपके जो आलोचक हैं वो ये भी कह लें कि 22 लाख फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पे, और कहीं ना कहीं जो फंडिंग है वो कहाँ से आ रही है?
बिल्कुल, कल परसों से कई सारी बातें चल रही थी। मैंने उन्हें कहा कि आपके पास कई सारी एजेंसीज हैं, आप एजेंसीज से पता करवा लीजिए। अगर एजेंसीज से भी नहीं हो तो आप ऐसा कीजिए, हमारे यहाँ पे एक सिस्टम होता है कि मंदिर के अंदर जोत हाथ में ली जाती है। मैं जोत हाथ में लेने के लिए तैयार हूँ, अगर आप ले सको तो आप ले लें।
यानी कि अग्नि परीक्षा के लिए तैयार है। लेकिन ये जो चुनाव है कोई अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि ज्यादातर जो है निर्दलीय राजस्थान की राजनीति में बहुत कम जीता है, और जसवंत सिंह जी भी जो यहाँ पर लड़े थे वो सेकंड नंबर पे थे, तो निर्दलीय का चुनाव ज्यादा कठिन होता है।
मुझे लगता है कि इस बार बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की जनता ने तय कर लिया है कि इस चुनाव को हम मजबूती के साथ में लड़ेंगे और जीतेंगे। आज के समय में हर आदमी रविंद्र बन के मेहनत कर रहा है। आप देखेंगे कि चारों तरफ सब लोग खुद से मेहनत कर रहे हैं, खुद ही अपना काम कर रहे हैं। रविंद्र एक चेहरा है, ये चुनाव बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की जनता चुनाव लड़ रही है।
एक लास्ट, आप राजस्थानी भाषा को लेकर भी काफी इंटरेस्टेड रहते हैं, इन्होंने राजस्थानी भाषा में भी शायद शपथ ली थी और बीए एलएलबी किया है आपने, कुछ राजस्थानी में कहावत बताइए इस चुनाव के लिए।
राजस्थानी रमीना साहब घनी कहावता है, पर हूँ एक ही जो कुमार स्लोगन भी है, इं सब भाइया ना राजी घूड़ा देखा या ना जद आंखा रमीना चमक देखा, जद मैंने लागे की ना हमेशा कह करें लंठ हो रहा करो, लांठा एकदम मजबूत। तो ऐसा सारा भाई जो लांठा है जिकर बदौलत रविंद्र लांठो है, और मजबूती रे बेड़ा आने वाले 4 तारीख में चुनाव।
तो बहुत अच्छे अंदाज में, उन्हें राजस्थानी अंदाज में बताया कि कैसे चुनाव लड़ना चाहिए, मतलब लाठा मींस एकदम मजबूत रह के लड़ना चाहिए उनको चुनाव, और मजबूती से लड़ रहे हैं चुनाव। हमारे से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
तो एक तरफ अपने युवा नेताओं से उम्मीदें हैं, जिस तरह से बाड़मेर में हर्षा बता रही थी, तो हमारे आपको बता दें यूपीएससी का रिजल्ट आ गया, और अपने आईएएस आईपीएस इन अधिकारियों से भी बहुत उम्मीद होती है। लखनऊ के आदित्य श्रीवास्तव ने टॉप किया है, और उड़ीसा के अनिमेश प्रधान दूसरी रैंक हासिल की है। तीसरे नंबर पर अनन्या रेड्डी हैं, और इस बार 1016 लोगों का इस प्रतिष्ठित इम्तिहान के लिए चयन हुआ। पहले 5 पर आने वाले हैं, पहले से ही वो 3 जो हैं इनमें से आईपीएस हैं, और मुझे बताया जा रहा है दूसरी रैंक हासिल करने वाले अनिमेश प्रधान हमारे साथ मौजूद हैं। अनिमेश जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत बधाई आपको, मेनी कंग्रेचुलेशंस। आप इतनी बढ़िया रैंकिंग लेकर हासिल यहाँ पर बैठ जीते हैं और आए हैं यहाँ पर, बहुत परिश्रम आपने किया होगा, क्योंकि जो हमारे सिविल सर्वेंट्स होते हैं इन पे जो परिश्रम करके बहुत मेहनत करके ही इस इम्तिहान को आप लोग पार पाते हैं, बहुत कड़ी मेहनत होती है और बहुत प्रेरणा भी लेते हैं लोग आप लोगों से, जरा बताइए अपनी इस प्रेरणा के बारे में।
जरूर, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अभी तक भी विश्वास हो नहीं रहा, मैं बहुत खुश हूँ। और मेरी प्रेरणा मेरी मम्मी और मेरे पापा थे, अभी वो दोनों मेरे साथ नहीं है। जब मैं 11वीं में था मेरे पापा गुजर गए थे और मेरी मम्मी 2 साल कैंसर का ट्रीटमेंट ले रही थी, और मार्च दो उनकी वो स्ट्रेंथ कि चाहे वो कितने फिजिकल मेंटल स्ट्रगल से जा रही थी उसके बावजूद उन्होंने इतना सपोर्ट किया मुझे, बट वो नहीं है आज। वो उनकी ही इंस्पिरेशन है, उनकी सपोर्ट है जो कि मेरे लिए इंस्पायर करती थी।
बिल्कुल, मुझे बताया जा रहा है आपने कंप्यूटर साइंस किया, पहले काम कर रहे थे, तो क्या रहा कि आपने इस इम्तिहान को लिया, थोड़ा उसके बारे में भी बताइए।
मैं अभी भी कार्यरत हूँ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में, रिफाइनरी हेडक्वार्टर्स दिल्ली में मैं कार्यरत हूँ, और मैं NIT राउरकेला से कंप्यूटर साइंस मैंने बीटेक की 2021 में ग्रेजुएट हुआ था।
जी, तो क्या 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 सोचा कि नहीं ये इम्तिहान क्लियर करना है, मेहनत के बारे में जरा बताइए थोड़ा सा। जी,
तो बचपन से ये था, ये एक सपना कि मुझे एक IAS ऑफिसर बनना है। मैं उड़ीसा से हूँ तो मैंने देखा है वहां पे क्या क्या जरूरतें हैं लोगों की, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इन जनरल पॉवर्टी हंगर, उन सब चीज को मैंने देखा है ग्रास रूट लेवल पे, तो वो सब चीजें इंस्पायर करती थी। एंड वैसे लगता था कि अगर मैं सिविल सर्विसेज में आऊँ तो मेरी जिंदगी ज्यादा पर्पसफुल और मीनिंगफुल बन सकती है एज कम्पेयर टू और किसी भी वही थी मेरी प्रेरणा, और इसीलिए मैंने।
जी, आपकी आवाज़ चली गई थी। ये भी जानना चाह रहे थे अनिमेश की कौन से एरियाज़ हैं, क्योंकि आपने कहा उड़ीसा में आपने ज़मीनी हालात देखे, कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पर अगर आपको समय मिला तो आप फोकस कर पाएंगे, कोई ऐसा क्षेत्र है?
पहले तो स्वास्थ्य, क्योंकि मैंने अपने दोनों पेरेंट्स को किसी ना किसी डिजीज के वजह से खोया है, तो वो मेरी एक सॉफ्ट कॉर्नर रहेगी उसके ऊपर। बट उसके अलावा मैं चाहता हूँ कि पॉवर्टी, एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, वो सब कुछ चीजें हो जो कि और बेहतर हो सके, नॉट जस्ट सिर्फ उड़ीसा में, पूरी देश में। मैं चाहता हूँ कि देशवासी ज्यादा खुश हो, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, ऑलराउंड हो, ऐसे नहीं तरह से। मैं चाहता देश का उन्नति,
बिल्कुल देश का उन्नति हो, यही आपका लक्ष्य रहेगा, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद अनिमेश जुड़ने के लिए, और एक बार फिर से बधाई इस जीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं देश की बात में, तुरंत लौटेंगे। अब चुनावों से जुड़ी छोटी लेकिन अहम खबरें। धाराशिव में प्रचार के दौरान शिवसेना यूबीटी के विधायक कैलाश पाटिल गर्मी की वजह से चक्कर खाकर गिर गए। धाराशिव में आज तापमान 38 डिग्री दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश में डिंपल यादव ने कहा है कि इस बार देश के लोग बीजेपी को हराने के लिए तैयार हैं। मैनपुरी सीट से समाजवादी पार्टी की तरफ से पर्चा भरने के बाद डिंपल यादव ने कहा कि सरकार युवाओं को नौकरी रोजगार नहीं दे पा रही है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि चुनावी बॉन्ड से बीजेपी का बैंड बच गया है। उन्होंने मैनपुरी में कहा है कि इस बार 400 पार नहीं, इस बार 400 हार होने जा रही है। राजद सांसद मीसा भारती ने पूछा है कि प्रधानमंत्री मोदी रोजगार और MSP की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के लोग पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 और 2019 में जो वायदे किए थे वे कब पूरे होंगे। राहुल गांधी और अखिलेश यादव कल गाजियाबाद में रहेंगे। दोनों लोकसभा प्रत्याशी डॉली शर्मा के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। इस दौरान वो मीडिया के साथ भी बातचीत करेंगे। राहुल गांधी ने आज वायनाड में रोड शो किया। सड़क की दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोग उनके स्वागत के लिए जुटे। उधर प्रियंका गांधी आज उत्तर पूर्व भारत में थी। उन्होंने त्रिपुरा से रोड शो किया। बिहार में बेटिकट हुए अश्विनी चौबे को आज गया में प्रधानमंत्री मोदी ने काफी मान सम्मान दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने मंच पर पशुपति पारस को हटाकर बगल की कुर्सी पर उनको बिठाया और पीठ थपथपाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 अप्रैल को अमरोहा में एक सभा को संबोधित करेंगे। 19 अप्रैल को दमोह और वर्धा में भी उनकी जनसभाएं होंगी। प्रधानमंत्री 20 अप्रैल को नांदेड़ और परभनी में जनसभा करेंगे। 21 अप्रैल को राजस्थान के जालौर और बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री की जनसभा होगी। गुना से लोकसभा उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। उस वक्त सिंधिया के साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव भी थे। गुना से बीजेपी उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नामांकन दाखिल करने से पहले हनुमान मंदिर में भी पूजा अर्चना की। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार में 40 की 40 लोकसभा सीटें हम जीतेंगे। उन्होंने पटना में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को बिहार के लोग बहुत चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ के हम शक्ल बताए जा रहे जगदीश रावत ने मंगलवार को उत्तराखंड में बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार किया। जगदीश रावत कपड़े भी योगी की तरह ही पहनते हैं। बीजेपी ने लोकसभा के लिए 7 उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी की है। इनमें 3 नाम पंजाब और 2 नाम उत्तर प्रदेश के हैं। 1-1 नाम महाराष्ट्र और बंगाल के लिए है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि धारा 370 समाप्त हो गई। बाकी देश की तरह जम्मू कश्मीर में भी पूरी आन बान और शान के साथ हमारा तिरंगा गगन को छू रहा है। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है कि पूरे देश से पुकार आ रही है कि वो सक्रिय राजनीति में आए। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस को लगेगा कि वो कुछ फर्क ला सकते हैं तो वो आएंगे। गढ़चिरौली में लोकसभा चुनावों के लिए मतदान दल नक्सल पीड़ित इलाकों के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना हो रहे हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज दार्जिलिंग में चुनाव प्रचार किया। इस मौके पर उन्होंने लोगों के साथ नृत्य भी किया और ढोल भी बजाए। बरेली में चुनाव सामग्री से जुड़ा कारोबार इस बार कुछ ठंडा है। ज्यादातर सामग्री बाहर से आने की वजह से इस बार यहां के छपाखानों के पास काम की कमी है। बरेली की एक और बड़ी प्रेस के प्रबंधक का कहना है कि इस बार जो काम आया है वो हर बार के 10% के आसपास ही होगा। मध्य प्रदेश के पन्ना में 107 साल की महिला ने गुडाबाई राजपूत के घर से उन्होंने वोट डाला। गुडाबाई के साथ साथ 85 साल से ज्यादा उम्र के बाकी पात्र मतदाताओं ने मतदान केंद्रों में जाए बिना वोटिंग की। चुनाव आयोग ने बुजुर्गों और विकलांगों समेत कई श्रेणी के वोटरों के लिए घर से वोट डालने की सुविधा दी है इस बार। तंजावुर की लोकसभा सीट से डीएमके उम्मीदवार मुरासोली ने मंगलवार को यानी आज चुनाव प्रचार के दौरान योग किया। 46 साल के मुरासोली पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। राजस्थान में इस बार दौसा में 2 मीणा उम्मीदवारों के बीच मुकाबला है। दौसा राजेश पायलट की वजह से सुर्खियों में रही है। दौसा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है। बाबा का ढाबा दौसा से।
बाबा का ढाबा आ पहुंचा है दौसा, और मैं एक ऐसी दुकान पे हूँ जिसके बारे में कोई नेम प्लेट नहीं है, कोई इसका कोई प्रचार नहीं है, लेकिन लोग सुबह सुबह आते हैं यहाँ पर। आपकी दुकान कब से है?
सर ये तो मेरे पिताजी करते थे पहले से, करीब 50 साल पुरानी दुकान है।
50 साल
जी।
तो दौसा में सुबह सुबह समोसा खाने का रिवाज?
हाँ सुबह सुबह आते हैं।
लोग पूरी सब्जी खाते हैं लेकिन यहाँ पे समोसा खाते हैं।
समोसे जाना है।
आपने कोई बैनर पोस्टर कुछ वो नहीं लगा रखा है?
कोई कुछ नहीं,
बिना
अब ये तो आ जाते हैं पहले से ही, ये वो तो चली आ रही है
जी।
हाँ जो
कोई दुकान का नाम भी नहीं है?
नाम तो क्या
बोर्ड भी नहीं है?
नहीं नहीं वो तो ऐसे ही आ जाते हैं, सब जानते हैं लोकल हैं सब।
हाँ
सब जानते हैं लोकल।
कितना समोसा बनाते हैं दिन भर?
अब साहब कर लेते हैं टाइम पास कर लेते हैं, टाइम पास हो जाता है अपना।
ये बताइए यहाँ के समोसा की खासियत क्या?
सबसे बड़ी चीज़ है कि शुद्ध मसाले, हाथ से कुटे हुए मसाले के समोसे बनते हैं। इनमें किसी भी तरह का कोई ज़्यादा मतलब जो मार्केट में आती केमिकल का मिश्रण है उस तरह का कोई मिश्रण नहीं है। और तकरीबन 40 से 45 साल
समोसा तो दो पहले कैसा है सुबह सुबह समोसा खाने का रिवाज? मुझे ये बताइए सुबह सुबह समोसा खाने का रिवाज कहाँ से है? लोग पूरी सब्जी खाते हैं?
देखिए एक्चुअली क्या है कि हम लोग पहले तो राजस्थानी हैं और राजस्थानी में गर्मा गर्म खाने का शौक, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। पहला चटपटा खाने का, अब इनमें दोनों चीज़ें हैं, गर्म है चटपटा है। आप खा रहे हैं आपको पता है किस तरह का स्वाद लगा आपको। समोसे बहुत खाए होंगे आपने भी, डोसा में समोसा खा रहे हैं, है कुछ फ़र्क लग रहा है आपको?
बढ़िया
बढ़िया लगा ना। बस यही चीज़ है इसकी जो खासियत यही है।
ये तो बंटी का समोसा हो गया, अब ये तो समोसा की बात हो गई। अब ये बताइए कि डोसा की राजनीति में क्या हो रहा है? दो मीनाओं की लड़ाई है।
हाँ जी
आप बताइए, एक कन्हैया और एक मुरारी, किसकी मुरली बजेगी?
हाँ जी दोस्तों, में सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुरली आखिर बजेगी किसकी, कन्हैया की या मुरारी की? कांग्रेस से कन्हैया भी और बीजेपी से कन्हैया और कांग्रेस से मुरारी लाल, दोनों अपनी अपनी मुरली बजाने के लिए तैयार हैं। और दोनों का आप एक फैक्ट जानिए, गुजर समाज के जो एक नेतृत्व करते हैं सचिन पायलट, उनका यहाँ बोलबाला है। मीणा समाज का नेतृत्व करते हैं किरोड़ी लाल मीणा, उनका भी यहाँ बोलबाला है। दोनों की प्रतिष्ठा यहाँ दाव पे लगी हुई है। और चूंकि दौसा लोकसभा सीट होट सीट होती जा रही है, इसलिए मानो कि बहुत 25 की 25 सीटें जीतने के लिए राजस्थान में बीजेपी को काफ़ी मशक्कत करनी है।
ये बताइए दौसा में समोसा तो बहुत तीखा है, अच्छा है, राजनीति कैसी चल रही है यहाँ पे? दो मीनाओं की लड़ाई है, कन्हैया और मुरारी,
कन्हैया लाल और मुरारी लाल मीणा के बीच में, या कांग्रेस और बीजेपी के बीच में काफ़ी द्वंद्व चल रहा है। ये हमेशा हॉट सीट रही है। स्वर्गीय राजेश पायलट से यहाँ से सांसद रहे हैं, पंडित नवल किशोर शर्मा जैसे सांसद रहे हैं, मतलब बहुत चर्चित सीट रही है ये। लेकिन एसटी की सामान्य सीट थी पहले, तो अब ये पिछले परिसीमन हुआ और उसमें एसटी सीट आ गई है। अब यहाँ एसटी और का तो मतों का तो विभाजन हो जाता है, लेकिन जहाँ यहाँ मुख्य रूप से निर्णायक ओबीसी और जनरल कास्ट रहती है। अब वो किसके साथ जाते हैं, किसके साथ किसका पल्ला भारी होता है, ये तो अभी समय बताएगा। तो पूरी राजस्थान का केंद्र बिंदु रहा है दोसा,
अच्छा,
मुख्य रूप से, इसलिए ये हमेशा शुरू से चर्चित और वोट सीट रही है यहाँ।
बहुत अच्छी बात है। समोसा खा के बताइए तो ज़रा सा
बोला।
अब आप बताइए क्यों हॉट सीट हो गई है?
वोट सीट तो दोसा तो बहुत बड़ा नाम है इंडिया के अंदर,
तो क्या बदलना चाहेंगे?
या हमारे
सांसद से क्या कहेंगे कि सांसद जी ये काम कर दो मेरा?
यहाँ तो पानी की कमी अब पूरी हो जाएगी, बाकी बीसलपुर का पानी शंकर शर्मा जी विधायक रहे हैं, इन्होंने 25 लाख लीटर पानी हमको ला के दिया है।
दौसा में ऐसा कुछ नहीं जो आप अपने सांसद से चाहेंगे कि वो ठीक कर दे?
नहीं, और जो डेवलपमेंट है थोड़ा सा जो बाकी रह गया वो करना है भाई, मोदी जी ने 10 साल में इतना कर दिया कि अब कोई ज़्यादा आवश्यकता रही नहीं है।
आप क्या चाहेंगे कि आपके दौसा में क्या होना चाहिए?
देखो दौसा में सभी लोग ये चाहते हैं कि विकास,
हाँ
विकास होना चाहिए, लोगों की समस्याएं उनका निजात होना चाहिए, ये मेन समस्या। जैसे पानी की बहुत बड़ी समस्या है जो 2 साल से कभी आज़ादी से ही चलती आ रही है। एक ज़माना यहाँ कहते थे कि लोग यहाँ बेटे नहीं देते थे पानी की वजह से, बेटे नहीं देते थे। और जो पुराने लोग हैं वो भी जानते हैं पानी किस तरह से लाया जाता है। अब तो काफ़ी सुविधा भी हो गई, कई योजनाएं भी बन गई, आने वाले समय में पानी भी मिल जाएगा लोगों को। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा 2 साल से पूरे ज़िले की पानी का समस्या।
आप यहाँ का समोसा बहुत फेमस है, लेके जाते हैं सुबह सुबह समोसा खाते हैं?
सुबह सुबह हफ्ते में 2-3 बार।
हाँ हफ्ते में 2-3 बार। ये बताइए क्या चाहेंगे आप अपने सांसद से, क्या कहेंगे कि मेरा एक एक चीज़ ये बदल दो दौसा में?
दौसा में से तो बहुत समस्या है, पानी की बहुत समस्या है, और लाइट भी प्रॉपर नहीं आती, बहुत ही ज़्यादा समस्या है दौसा में।
और युवाओं के लिए क्या कहोगे आप? तो
यंग हो,
युवा के लिए है जिसमें 200 में सारी फैसिलिटीज दे रखी, स्कूल कॉलेज सब प्रॉपर है, प्रॉपर पढ़ाई हो रही है सारी चीज़ें,
लेकिन पानी और बिजली,
पानी बिजली समस्या
जी, क्या चाहेंगे दौसा में अपने सांसद से क्या कहेंगे भाई साहब?
पानी की समस्या तो मैं नहीं,
काम तो ये मेरा कर दो,
लेकिन सीवर लाइन की बहुत बड़ी, सीवर लाइन की समस्या बड़ी है, यहाँ कोई सीवर लाइन नहीं पूरे क्षेत्र में,
अच्छा कोई नहीं है,
कोई एक भी लाइन नहीं, सीवर लाइन नहीं, चाहे वो VIP कॉलोनी हो चाहे साधारण कॉलोनी हो, और गंदगी का भंडार रहता है, ये पुराना एरिया है, विकसित एरिया था काफ़ी, अब गवर्नमेंट ने इसको क्या है कि चाहे वो कोई सी गवर्नमेंट रही हो
जी,
उन्होंने इस एरिया पर ध्यान ही नहीं दिया।
आप क्या चाहेंगे, क्या होना चाहिए, एक चीज़ क्या बदलना चाहिए? तो
मैं सर ये चाहूँगा कि जो आने वाला विधायक MP हो वो सर दौसा से गुंडागर्दी नाम की चीज़ को ख़त्म कर दे,
मतलब लॉ एंड ऑर्डर की,
लॉ एंड ऑर्डर की सबसे बड़ी मेन समस्या है।
आप क्या चाहेंगे दौसा में अपने सांसद से क्या करना चाहेंगे कि एक काम तो ये कर दो पहले?
देखो दौसा क्या है, देवनगरी के नाम से जाना जाता है, और यहाँ की जो एनवायरनमेंट था बहुत अच्छा हुआ करता था आज से 20-25 वर्ष पहले, लेकिन धीरे धीरे जो राजनीतिक प्रपंच हुए यहाँ पर, तो यहाँ जो दौसा जिला जातिवाद की भयंकर चपेट में आ गया है, उसकी वजह से यहाँ का पूरा जो विकास जो होना चाहिए वो बिल्कुल ही बैक फुट पर चला गया, यहाँ एक जिला हेडक्वार्टर होने के बावजूद भी यहाँ वो फैसिलिटीज़ वो सुविधाएँ चाहे एजुकेशन में देख लो चाहे मेडिकल में देख लो चाहे सड़क व्यवस्था और जो भी मूलभूत जो आवश्यकताएं व्यक्ति को होती है वो इसलिए नहीं हो पाई कि यहाँ मजबूत इच्छा शक्ति वाला कोई भी जनप्रतिनिधि जीत नहीं सका। चुनाव जीतना एक अलग बात है लेकिन किसी भी राजनेता में मजबूत इच्छा शक्ति इस बात की नहीं रही कि मैं मेरे क्षेत्र का वाजिब विकास करूं।
समोसा लेके जा रहे हैं?
बिल्कुल
है, क्या खासियत है इस समोसे में?
खासियत अच्छी है, यहाँ पे वैरायटी है, दूसरा बिल्कुल नॉर्मल मसाला है।
मुझे ये बताइए दौसा में सबसे बड़ी समस्या क्या है?
सबसे बड़ी समस्या पानी की है, यहाँ कोई राजनेता ढंग का है नहीं, और यहाँ समस्या ये यहाँ पे कोई विकास के नाम पे भी कुछ नहीं।
जयपुर नजदीक है, सारे लोग हर काम के लिए जयपुर ही जाते हैं,
कोई नहीं।
हम ये जानना चाहते हैं ये फेमस क्यों है?
स्वादिष्ट बनाता है इसलिए फेमस है।
आइए,
पुराने जो शहर की तहजीब है ना वो है इसमें।
अच्छा, क्या तहजीब है बताइए?
तहजीब है कि ये जो जगह है वो राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा है। सन 1952 से यहाँ राजनीति शुरू होती थी, ये गांधी चौक है।
अच्छा,
और
सर ये लो
यहाँ
चाहे
बात जयपुर दरबार की हो, चाहे गुजर नेता की हो, चाहे मीणा नेता की हो, राजनीति यहीं से शुरू होती है।
दो मीणाओं की लड़ाई है, एक कन्हैया और एक मुरारी, तो किसकी बांसुरी बजेगी 4 तारीख को?
ये तो जनता ही बताएगी किसकी बांसुरी बजेगी, लेकिन जहाँ तक कैंपिंग की बात है, प्रचार प्रसार की बात है, तो BJP का जो नेतृत्व है अनुशासित पार्टी मानी जाती है, लेकिन दौसा में वो अनुशासन दिखाई नहीं दे रहा।
अच्छा।
जबकि इस मामले में कांग्रेस काफ़ी आगे है।
सचिन पायलट का क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप?
सचिन पायलट बेसिकली एक युवा नेता है, युवाओं में उनकी डिमांड है नो डाउट, लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक हाशिए पर नहीं लाया जा रहा है, जैसे मुरारी लाल जी को टिकट दिया तो लोग ये मानते हैं कि साहब ये सचिन पायलट का टिकट, कांग्रेस का टिकट क्यों नहीं है?
अच्छा, मुझे ये बताइए दौसा में क्या चाहेंगे कि आपका सांसद क्या करे, एक पहला काम?
दौसा में रोजगार के अवसर नहीं है, रोजगार के अवसर नहीं है, खेती नहीं है, ये सब के पीछे कारण है पानी नहीं है, पानी होता तो उस सबके पीछे ये है।
बैठिए साहब, अब बात आप बताइए समोसा के बारे में पहले बताइए।
देखिए बंटी का समोसा
पहले खा के बताइए।
बिल्कुल, बंटी का समोसा हम डेली खाते हैं और यहाँ पर आते हैं, बहुत ही अच्छा समोसा है।
अच्छा, अभी आप ये बताइए, तो समोसा का जायका हो गया, राजनीति का जायका कैसा चल रहा है?
देखिए राजनीति का जायका,
मैं किसी पार्टी के बारे में वो नहीं जानता,
बिल्कुल
आप बताइए जनरल बताइए कैसे, दो मीना
जनरली बात बता रहा
हूँ, एक का नाम कन्हैया है एक का नाम मुरारी है,
ठीक है,
दोनों कृष्ण है।
देखो ईमानदार, मुरारी कन्हैया दोनों कृष्ण के रूप है, लेकिन यहाँ पर जो मेन मुद्दा आ रहा है, जो ऑलरेडी यहाँ पे विधायक रहे हैं मुरारी लाल मीणा, वो एक ईमानदार छवि के व्यक्ति है, उनको प्रत्येक व्यक्ति घर वाइज जानता है, किस तरह के व्यक्तित्व के धनी हैं, वो जनता के बीच में रहते हैं, जनता का मानस है, उनको सपोर्ट करेंगे, आगे वोट तो जनता ही देगी।
तो ये बताइए दौसा इतना हॉट सीट कैसे हो गया?
BJP सत्ता में है, उनको कहीं डर है कि जनता उनको दरकिनार नहीं कर दे, और दौसा के अंदर कुछ ज़्यादा डर लग रहा है उनको।
इस बार हैट्रिक होने वाली है?
देखिए हैट्रिक होना नहीं होना, अगर एक भी सीट कांग्रेस BJP गवाती है तो उनको नुकसान है, बैकफुट पे जाएगी, 100% जाएगी BJP, इसमें कोई दो राय नहीं है।
बताइए समोसा क्यों फेमस है?
अरे साहब, सुबह सुबह का ये हमारा प्यारा भोजन है, जिससे हमारा पेट भी बड़ा और शुद्ध ताज़ा समोसे पंटे भाई को।
आप क्या चाहेंगे दौसा में क्या होना चाहिए, अपने सांसद को क्या कहेंगे भाई पहला काम ये कर दो?
जो भी सांसद बने हमारे दौसा के मूलभूत समस्या पानी की समस्या उसका समाधान करे, और जो भी हमारे ट्रैफिक की हमारे क्या ना सीवरेज की समस्या है, ये जो हमारे बरसों से जब से जिला बना है जब से ये समस्याएं हैं, लेकिन कई सांसद एमएलए एमपी बनते हैं बाकी सब बोलते हैं, नोट वोट सब कुछ बटते हैं सब कुछ होता है, लेकिन बाकी जनता को तो कोई रिलीफ मिलता नहीं।
सुबह सुबह समोसा खाने का रिवाज है यहाँ, लोग पूरी सब्जी खाते हैं, यहाँ के लोग समोसा खाते क्यों?
आनंद आता है सबको समोसा खा के।
और ये फेमस है?
फेमस है।
अब ये बताइए कि आप दौसा में क्या चाहेंगे, अपने सांसद को क्या कहेंगे कि ये काम सबसे पहले?
सारी दौसा की एक ही मांग है कि चंबल का पानी जो मोदी जी ने स्वीकृत किया है 45,000 करोड़ में, वो जल्दी से जल्दी काम शुरू हो रहा है।
पानी की बहुत किल्लत,
पानी की सबसे ज्यादा किल्लत, रोजगार की किल्लत है, उद्योग धंधे लगे, कोई इंडस्ट्रीज लगे बड़ी।
माशाल्लाह आप भीड़ देख सकते हैं। तो इस बंटी के समोसे के दुकान से दौसा से कुछ राजनीतिक चर्चा करी लोगों के साथ, कुछ समोसे का जायका भी लिया। तो बाबा के ढाबा में आज मनोरंजन भारती को इजाजत दीजिए, कैमरामैन अशोक महाले के साथ मनोरंजन भारती, एनडीटीवी इंडिया के लिए।